नमस्कार भारत, 25 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमरीकी बाजार में गिरावट का दौर, फेडरल रिजर्व पर बरसे राष्ट्रपति ट्रंप, निवेशक चिंतित।
I'm a little worried. Do you think that the Fed has made some contentious and serious?
उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर कितनी उत्साहित है कांग्रेस?
कांग्रेस पार्टी अपनी 80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, बाकी हमारी लीडरशिप जो भी निर्णय करेगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनको माने।
और खास रिपोर्ट, असम के बोगी व्हील में बना डबल डेकर पोल रणनीतिक तौर पर कितना अहम?
चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो डिफेंस बिल्डअप है, हमारे साथ चाइना का जो गैप है, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन मिनिमाइजिंग और ब्रिजिंग दैट गैप।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को अमरीकी वित्तीय बाजारों में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमरीकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अर्थव्यवस्था में आई समस्या की एकमात्र वजह फेडरल रिजर्व ही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया से अमरीकी सेना को वापस बुलाए जाने के अपने फैसले का भी बचाव किया है। इस फैसले की वजह से अमरीकी राष्ट्रपति की काफ़ी आलोचना हो रही है। मैक्सिको के पुएब्ला प्रांत की गवर्नर मार्था एरिका एलेंसो की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। इस विमान हादसे में उनके पति सीनेटर राफेल मोरेनो वैले की भी मौत हो गई है। मार्था ने 14 दिसंबर को ही गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक सरकारी परिसर में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों की भी मौत हो गई है। इस हमले में कम से कम 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। किसी भी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इंडोनेशिया में शनिवार को आई सुनामी से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 373 हो गई है। आशंका है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। प्रभावित इलाकों में मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। सुंडा खाड़ी के दोनों तरफ जावा और सुमात्रा के तटीय इलाकों में अचानक आई सुनामी की वजह से 1400 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। 128 लोग अब भी लापता हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने प्रभावित लोगों की मदद का वादा करते हुए कहा, इंडोनेशिया चीन का पड़ोसी देश है। शनिवार को आई सुनामी की वजह से वहां भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस दुख की घड़ी में चीन को इंडोनेशिया से पूरी संवेदना है। चीन के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को संदेश भेजकर अपना दुख भी जताया है। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इंडोनेशियाई सरकार के नेतृत्व में प्रभावित लोग बहुत जल्दी इस परेशानी से उबर जाएंगे और दोबारा से एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। चीन अपनी तरफ से हर संभव मदद के लिए तैयार है। ये थे हुआ चुनयिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। म्यांमार में दोषी ठहराए गए समाचार एजेंसी रॉयटर्स के 2 पत्रकारों की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश के सामने अपील दर्ज कराई है। पत्रकार वा लोन और क्याव सो ओ पर रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा की जांच के दौरान राष्ट्रीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन का आरोप है। म्यांमार की एक अदालत ने इन दोनों पत्रकारों को 7 साल की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के वकील ने भरोसा जताया है कि उनके साथ इंसाफ होगा। वालोन की पत्नी पैन ई मॉन ने कहा कि वो चाहती हैं कि दोनों पत्रकार जल्दी बाहर आ जाएं। उन्होंने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस केस को पूरी निष्पक्षता के साथ सुना जाएगा। हम दोनों पत्रकारों के लिए बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि उनकी उम्मीदें पूरी हों और हमारा परिवार एक बार फिर साथ हो। ये थे रॉयटर के पत्रकार वालोन की पत्नी पैन ई मॉन के शब्द। सूडान के सूचना मंत्री बुशरा गमा अरोर ने कहा है कि सरकार देश की मौजूदा स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रही है और इस स्थिति का हल निकालने की कोशिश कर रही है। ब्रेड और ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिल्ली में पारा तेजी से नीचे जा रहा है और कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, लेकिन ठिठुरती दिल्ली में आज राजनीतिक तापक्रम बढ़ सकता है। वजह यह है कि आम चुनाव की तैयारी के लिए मोर्चा तैयार करने में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास पुल के उद्घाटन के लिए असम में होंगे। नमस्कार भारत में चर्चा होगी इन सभी खबरों की, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीका में शेयर बाजार गोते लगा रहा है। कल 653 अंक की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था की दिक्कतों के लिए देश के केंद्रीय बैंक को जिम्मेदार बताया है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीका में जहां डाओ में 653 अंकों के साथ 2.9% की गिरावट आई, वहीं नैसडैक में 2.2% और S&P में 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। पिछले करीब 14 महीनों में अमरीका के शेयर बाजारों में ये सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि डाओ शेयर बाजार में क्रिसमस के करीब हफ्ते की पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। जानकार कहते हैं कि सबसे पहले जो अमरीकी सरकार से भ्रमित करने वाले संकेत आए, उनमें अमरीकी वित्त मंत्री स्टीव मनुचिन द्वारा रविवार को अमरीका के कई बड़े बैंकों के CEOs को फोन करके बैंकों की हालत के बारे में जानकारी लिया जाना शामिल है, जिसके बाद से स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हुई। मैनेजर ने एक ट्वीट के जरिए लिखा कि बैंकों के CEOs ने उन्हें यकीन दिलाया कि बैंक अच्छी हालत में हैं और ग्राहकों और व्यापारियों को कर्ज भी देना जारी रख सकते हैं। लेकिन इस तरह अमरीकी वित्त मंत्री द्वारा फोन करके बैंकों की हालत की जानकारी हासिल करने से निवेशकों में हड़कंप मच गया कि अमरीकी अर्थव्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री क्या जानते हैं जो निवेशक और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी नहीं जानते। इस भ्रम की स्थिति के कारण JP Morgan चेज, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक जैसे बड़े अमरीकी बैंकों के शेयर में गिरावट आई। यही नहीं, मेनुचिन ने राष्ट्रपति ट्रंप के वित्तीय मामलों के वर्किंग ग्रुप से भी फोन पर बात की, जिनमें अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन समेत वित्तीय क्षेत्र के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। सोमवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में लिखा कि अमेरिका को बस एक ही समस्या का सामना है और वो है फेडरल रिजर्व। कहा जाता है कि उसके बाद निवेशकों में ये चिंता बढ़ गई कि ट्रंप फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को उनके पद से शायद हटा देंगे। एस्पोसिटो सिक्योरिटीज नामी कंपनी के मार्क एस्पोसिटो कहते हैं, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। फेडरल रिजर्व ने कुछ गलतियाँ की हैं और मुझे लगता है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को पद से हटा दिया जाएगा। वॉल स्ट्रीट की कंपनी एस्पोसिटो सिक्योरिटीज के मार्क एस्पोसिटो के शब्द। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन द्वारा हाल ही में ब्याज की दर में बढ़ोतरी करने से राष्ट्रपति ट्रंप खुश नहीं है और वो अपनी नाराजगी कई बार जता भी चुके हैं। ट्रंप ने सोमवार को भी नाराजगी जताते हुए अपनी ट्वीट में लिखा कि फेडरल रिजर्व को न तो बाजार की भावनाओं का कोई अंदाजा है और न ही मजबूत डॉलर या चीन के साथ जरूरी व्यापार युद्ध की समझ है। अमरीकी मीडिया में छपी खबरों के अनुसार ट्रंप ने अपने सलाहकारों से फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल को हटाने के बारे में भी बातचीत की है। पावेल को ट्रंप ने ही चुना था और उन्होंने इसी साल फरवरी में चेयरमैन का ओहदा संभाला था। अमरीका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को सरकार के हस्तक्षेप के बगैर अपना कामकाज करने की कानून के तहत आजादी होती है। स्टॉक मार्केट में शेयरों की बिक्री में अधिक तेजी का एक कारण अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा भी बताया जा रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने अगले साल भी ब्याज की दर बढ़ाने का इशारा दिया है। अमरीका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के कारण भी निवेशकों में चिंता है। इस सब के बीच अमरीका में बजट का बिल सेनेट में मंजूर न होने के कारण सरकारी कामकाज आंशिक रूप से बंद है और अभी गुरुवार से पहले इसके खुलने के भी आसार नहीं है, जिससे शेयर बाजार में निवेशकों में चिंता बढ़ी है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
रुख भारत का। उत्तर भारत में मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीति के मैदान में गर्मी बढ़ रही है। साल 2019 के आम चुनाव के पहले राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश जारी है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन तैयार करने की चर्चा जोरों पर आ गई है, लेकिन इस गठबंधन की सूरत कैसी होगी? क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा होगी? इन सवालों की पड़ताल की है हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र ने।
उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की एकता यानी महागठबंधन की तस्वीर को लेकर एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं का मुख्य मुद्दा यह है कि गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा या फिर बिना कांग्रेस के। तीन राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद ये चर्चा गर्म हो गई कि सपा और बसपा कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में नहीं रखेंगी और उनके बीच सीटों का तालमेल भी लगभग हो चुका है। लेकिन सपा और बसपा दोनों ही दलों के नेताओं ने ऐसे किसी समझौते की बात से इनकार किया है। खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं,
अभी बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरीके से कोई भी चीज राजनीतिक जो फैसले होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे।
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बाद मिली करारी पराजय के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी का मानना है कि उसे गठबंधन में जितनी सीटें मिलने की संभावना है उससे ज्यादा सीटें वो अकेले लड़कर ही जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मदान कहते हैं कि फिलहाल उनकी पार्टी राज्य की सभी 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है।
कांग्रेस पार्टी अपनी 80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को लगता है जिस तरह से आम जनता कांग्रेस पार्टी की बातों को मानती है, इनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास जता रही है, हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन इस उत्तर प्रदेश में होगा। बाकी हमारी लीडरशिप जो भी निर्णय करेगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका स्वागत करके उसको माने।
जानकारों का कहना है कि गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को सपा और बसपा की ओर से अधिकतम 10 सीटें दी जा रही हैं, जबकि पार्टी की रणनीति ये है कि वो अपने बड़े और प्रभावी नेताओं को उनके क्षेत्रों से लड़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसी स्थिति में उसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो गठबंधन की तुलना में अकेले लड़कर ज्यादा सीटें पा सकती है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि सीटों के अलावा कांग्रेस को अकेले लड़ने में और भी फायदे नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस का लार्जर इंटरेस्ट ये है कि उनका हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नेता पैदा हो जाएगा, एक संगठन खड़ा हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो भी वोट बैंक होगा वो वापस आ जाएगा।
जानकारों का ये भी कहना है कि सपा और बसपा के लिए राज्य में बीजेपी और कांग्रेस में से किसी का भी मजबूत रहना नुकसानदायक है, लेकिन वोटों का विभाजन रोकने की विवशता ही उन्हें कांग्रेस से गठबंधन के लिए प्रेरित कर रही है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति में निश्चित तौर पर मतों का बंटवारा होगा। सुभाष मिश्र कहते हैं कि इस स्थिति में भी सपा बसपा और कांग्रेस चाहे जितने फायदे में रहे बीजेपी नुकसान में जरूर रहेगी।
जो कांग्रेस का वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक है वो लार्जली अभी की स्थिति में कॉमन है, दैट इज अपर कास्ट। दलित मुसलमान यादव बीजेपी को नहीं मिलता ना कांग्रेस को मिलता है, तो वो तो कंसोलिडेट करेगा वहीं पर। और बीजेपी का जो एक अपर कास्ट का हम कहते हैं 15% भी ले जाए कांग्रेस, 20% भी ले जाए, तो दैट विल बी डायरेक्ट लॉस ऑफ द बीजेपी।
बहरहाल गठबंधन का स्वरूप क्या होता है ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपी में पिछले एक साल के भीतर हुए उपचुनाव और हाल ही में तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की ताकत और अलग लड़ने के प्रभाव का लिटमस टेस्ट तो हो ही चुका है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
चुनाव के पहले एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी हैं। वो कई नेताओं से इस सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं। राव अब दिल्ली आ रहे हैं। क्या है उनकी रणनीति, यही सवाल किया हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से।
देखिए, तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में अपनी भारी जीत के बाद केसीआर जो है वो काफी जोश में है और उन्होंने एक तरह से एक धार्मिक और एक राजनीतिक दोनों तरह की यात्रा शुरू की है पूरे देश की, और इसकी शुरुआत उन्होंने रविवार को विशाखापट्टनम से की थी, जहां पे एक बहुत बड़ा शारदा पीठ धार्मिक केंद्र है, वहां गए, वहां के जो अधिपति हैं उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर वहां से वो उड़ीसा गए, वहां पर उन्होंने मशहूर जगन्नाथ मंदिर में और कोणार्क के सन टेम्पल में पूजा की है, और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उनसे भेंट की, उनसे बातचीत की, और उनका कहना यह है कि वो एक गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के लिए निकले हैं। वो कह रहे हैं कि वो तमाम राजनीतिक दलों से और खासतौर से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ के एक नई ताकत बनाई जाए, एक नया तीसरा मोर्चा बनाया जाए। सोमवार को ही फिर वो वहां से उड़ीसा से कोलकाता पहुंचे, कोलकाता में उन्होंने ममता बनर्जी से बात की है, और ममता बनर्जी से बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से जो कुछ कहा वो ये था कि केसीआर खुद को उन्होंने कहा कि केसीआर का मिशन है गैर कांग्रेस गैर भाजपा मोर्चा बनाने का, और ये जो बातचीत हुई है ये शुरुआत है, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बहुत जल्द ही इसका कोई ठोस नतीजा निकलेगा और वो एक शुभ समाचार देश को सुनाने वाले हैं। याद होगा कि जब नतीजे आ रहे थे, जिस दिन नतीजे आए तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के जिसमें टीआरएस की भारी जीत हुई थी, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था केसीआर ने कि न सिर्फ मोर्चा बनेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर की एक नई राजनीतिक पार्टी भी बन सकती है जो कि अलग अलग क्षेत्रीय दलों का एक तरह का कंसोर्शियम होगा। तो एक नई उन्होंने बात की है और शायद उसी लाइन पे उनकी बातचीत हुई नवीन पटनायक से और अब ममता बनर्जी से, और मंगलवार को वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में भी वो कई नेताओं से मिलने वाले, 3 दिन वहां पे गुजारेंगे। अहम बात यह है कि इस पूरे मिशन के लिए या इस यात्रा के लिए जो लगभग 1 महीना चलने वाली है उसके लिए केसीआर ने एक विशेष विमान किराए पे लिया है और इसी विमान में वो शायद कई और राज्यों का भी दौरा करने वाले। जहां तक दिल्ली का सवाल है, वहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करने वाले हैं। उनका कहना है कि एक ऐसी रस्मी मुलाकात होगी, कटेसी कॉल होगी क्योंकि वो अभी इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती से और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी वो मिलने वाले हैं।
जी उमर, कांग्रेस की ओर से इसको लेकर पूरी क्या प्रतिक्रिया है, जो इनकी पूरी जद्दोजहद चल रही है?
कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है अब तक। कांग्रेस तो शायद वो गौर से देखेगी कि दूसरे जो क्षेत्रीय नेता है वो किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब जो दौड़ चल रही है कि कांग्रेस को मिला के विपक्ष का मोर्चा बनाया जाए या बिना कांग्रेस के, तो इसमें 2 गुट आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। एक गुट वो है जो कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, उसका नेतृत्व इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं और शायद उसमें स्टालिन भी हैं डीएमके के नेता, जिन्होंने खुल के कहा है कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी को होना चाहिए। दूसरी तरफ वो नेता है जो चाहते हैं कि कांग्रेस पहले इस मोर्चे में ना रहे। इस सूची में काफी लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है वो ये जो केसीआर का मिशन है इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक तरह से पिछले दरवाजे से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की मदद करने की कोशिश है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में होंगे। वो डिब्रूगढ़ में बने देश के सबसे लंबे सड़क और रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से भी अहम बताया जा रहा है। ये पुल क्यों खास है, बता रहे हैं दिलीप कुमार शर्मा।
अब से महज कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनकर तैयार हुए जिस बोगीबिल पुल का उद्घाटन करेंगे, उससे न केवल असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा का समय 4 घंटे घटकर कम हो जाएगा, बल्कि सुरक्षा रणनीति के नजरिए से भी भारत एक महत्वपूर्ण मकाम हासिल कर लेगा। दरअसल रेलवे द्वारा निर्मित इस डबल डेकर पुल से ट्रेन और गाड़ियां दोनों गुजर सकेंगी। ऊपरी तल पर 3 लेन की सड़क बनाई गई है, जबकि नीचे 2 रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं। इस पुल की मियाद लगभग 120 वर्ष की होगी। ये भारत का एकमात्र पूर्ण रूप से वेल्डेड पुल है, जिसके निर्माण में देश में पहली बार यूरोपीय वेल्डिंग मानकों का पालन किया गया है। पुल को इतना मजबूत बनाया गया है कि इससे मिलिट्री टैंक भी आसानी से निकल सकेंगे। इस पुल के जरिए भारतीय फौज अब काफी कम समय में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती हिस्सों तक पहुंच सकेगी। सैन्य सुरक्षा की रणनीति की समझ रखने वाले रूपक भट्टाचार्य ने बीबीसी से कहा,
एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था। चाइना बॉर्डर एकदम फॉरवर्ड एरिया में, इसमें फर्स्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सप्लाईज होगा। ब्रिज डिब्रूगढ़ को नॉर्थ बैंक के साथ जोड़ देगा, बोथ बाय रोड एंड बाय रेल। सर अभी मतलब जो गैप था हमारे साथ, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, जो डिफेंस बिल्डअप है हमारे साथ चाइना का जो गैप है, तो इससे स्टेप फॉरवर्ड इन मिनिमाइजिंग और ब्रिजिंग द गैप।
इस पुल की वजह से अरुणाचल प्रदेश से सटे धेमाजी से डिब्रूगढ़ की दूरी महज 100 किलोमीटर की रह जाएगी, जो सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। इससे पहले दोनों शहरों का फासला 500 किलोमीटर का था, जिसे पूरा करने में 34 घंटे का वक्त लगता था। ऐसा दावा किया जाता है कि 1962 में चीनी आक्रमण के बाद डिब्रूगढ़ के समीप ब्रह्मपुत्र के इस हिस्से पर सबसे पहले पुल बनाने की मांग 1965 में उठी थी। डिब्रूगढ़ स्थित ईस्टर्न असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भूदेव फुकन कहते हैं,
आपका 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ रहा ना, हम लोग 1965 में पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जब जीवन राम रहा मेमोरेंडम दिया रहा जब ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ का आसपास ब्रह्मपुत्र का ऊपर में 120 चाहिए तभी 1965 में।
अरुणाचल प्रदेश में भारत के ऐसे बड़े विकास कार्यों को लेकर चीन अक्सर आपत्ति दर्ज करता रहा है। लंबे समय से चीन का दावा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसके क्षेत्र के अधीन है और उसे वो दक्षिणी तिब्बत के तौर पर पुकारता है। इसके जवाब में अरुणाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डोमिनिक तादार कहते हैं।
ये जो बोगी बिल का जो ब्रिज इनोग्रेशन प्रधानमंत्री के और की ओर से जो किया जा रहा है वो चाइना के लिए एक बड़ा जवाब होगा और इससे चाइना का मुंह को बंद करना चाहिए। अपने अपने भारत के भीतर हम कुछ भी करें, पुल बनाइए चाहे कुछ भी विकास के काम करें, चाइना का क्या अधिकार है आवाज उठाने का।
बोगी बिल पुल के निर्माण से जुड़ी परियोजना 1997-98 में स्वीकृत हुई थी। इस परियोजना के आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 को रखी थी और इस परियोजना पर काम 21 अप्रैल 2002 को यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया था। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
BBC के वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए पॉर्न देखने का महिलाओं के खिलाफ हिंसा से क्या है संबंध।
मैं किसी भी फीमेल से मिलता था दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था एक सेक्सुअल एक्ट उनको लेके।
क्या सिनेमा इंडस्ट्री पर हावी हो रही है वेब सीरीज।
हॉलीवुड की पिक्चर भी कुछ नहीं उसके सामने।
रिहान फजल सुनाएंगे बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के किस्से।
मैं उधर से अपनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाए चार्ल्स।
BBC इंडिया बोल का विशेष अंक जिसमें श्रोताओं के विचारों और अपेक्षाओं को मिलेगी जगह। BBC के खजाने से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का विशेष साक्षात्कार।
मेरे पिताजी के साथ थोड़े से वर्ष मैंने गुजारे हैं जो उन्होंने मुझे गाना सिखाया।
कौन है वो युवा राजनेता जो अगले 20 सालों में कर सकते हैं भारत का नेतृत्व। सुनिए दिन भर में ये सब 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक।
वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला आप आज से दिन भर में सुन सकते हैं और अब भूमिका राय से जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। जी भूमिका।
वात्सल्य जी, दिल्ली से छपने वाले प्रमुख अखबारों की बात करें तो सरकार GST में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है और इस खबर को लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर लिया है। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान ने इसे मुख्य खबर बनाया है अपने अखबार का आज। इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों पर रोक की खबर भी इस अखबार के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला ने 3 तलाक पर 27 दिसंबर को संसद में विधेयक लाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो परियोजना को मंजूरी भी आज की प्रमुख और लोगों के मतलब की खबर है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और राफेल मामले पर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है, वही बयान दिया है जो कांग्रेस एक लंबे समय से देती आ रही है।
शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है और केंद्र सरकार में भी शामिल।
बिल्कुल, इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और इस खबर को द हिंदू ने प्रकाशित किया है। KCR ने कहा है कि उनका मकसद गैर कांग्रेस और गैर BJP फ्रंट बनाना है, जिसपे हमने एक रिपोर्ट भी सुनाई थी, एक विस्तृत रिपोर्ट भी सुना चुके
हैं। उमर फारूक से हुई थी।
नव भारत टाइम्स लिखता है कि अयोध्या केस की सुनवाई 4 जनवरी को, इस मामले में 3 सदस्यीय पीठ का भी गठन हो सकता है। और नवभारत टाइम्स ने एक खबर दी है कि एक भी पेड़ काटे बिना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि तैयार की गई है, जिसे सदैव अटल नाम दिया गया है, जो राजघाट के पास है। तो ये आज के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां।
अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन भी है।
जी बिल्कुल, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस भी है आज, तो हमारे सभी श्रोताओं को क्रिसमस की बधाई।
जी, आप लगता है क्रिसमस के मूड में है। शुक्रिया भूमिका अखबारों की समीक्षा के लिए। और जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था और भूमिका राय ने अखबारों की समीक्षा के दौरान भी बताया कि इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगले 2 दिन तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने बात की पर्यावरण विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय से।
देखिए, ये इसका प्रदूषण का जो दिल्ली में होता है और हर जगह जो होता है वो 2 तरह से बिहेव करता है। एक तो डायरेक्टली जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है तो एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है, जैसे कि दीपावली के ठीक बाद होता है, और यह आप देखेंगे कि इंडस्ट्री से पॉल्यूशन आ रहा है या गाड़ियों से आ रहा है। तो अभी की जो स्थिति है कि प्रदूषण तो हो रहा है परंतु साथ ही साथ आबो हवा ऐसी है या वेदर कंडीशंस ऐसे हैं कि प्रदूषण का डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा है, वो फैल नहीं पा रहा है या उठ नहीं पा रहा है। और जो बाउंड्री लेयर होता है एटमॉस्फेयर का वो काफी क्लोज है जमीन के, और टेम्परेचर भी काफी लो है, तो हवा सघन है अभी, तो प्रदूषण फैल भी नहीं पा रहा है, सनलाइट भी उतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही है।
तो ऐसी स्थिति कब तक बनी रह सकती है और इस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए?
अभी तक जो फोरकास्ट है ये बता रहे हैं कि 3 दिन तक ये स्थिति रहेगी, तो इसलिए एक्शन भी लिए जा रहे हैं, परंतु ये चिंता का विषय है डेफिनेटली, क्योंकि अगर इस लेवल में प्रदूषण रहता है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एडवाइजरी के हिसाब से ये काफी घातक है सामान्य लोगों के लिए भी, और जिनको सांस की तकलीफ है या हार्ट या दूसरी तमाम तकलीफें हैं, तो इनको हिदायत दी जा रही है कि वो आउटडोर एक्सपोजर अपना कम करें, एक्सर्शन कम करें, तो ये एक एहतियातन आप उपाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ एजेंसीज जो हैं उनको काफी ग्राउंड लेवल एक्शन लेना होगा, कई एरियाज में आप देखेंगे कि बायोमास बर्निंग होती है या फिर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आपको दिखते हैं, या इंडस्ट्रीज का भी इशू काफी सामने आ रहा है कि अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं, तो उन्हें डेफिनेटली बंद करना होगा। ट्रक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अभी ये बैन लगा दिया गया है 2 दिनों के लिए, और साथ में इंडस्ट्रीज को भी बंद किया जा रहा है जो पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, मेरे ख्याल से इसको काफी इंटेंसिफाई करके। और साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि ट्रैफिक मूवमेंट जो है, गाड़ियों का दबाव बहुत ज्यादा हो गया शहर में, तो अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कारपूल करें तो वो भी शहर के लिए बेहतर होगा।
विवेक जी, एक सवाल ये होता है कि क्या सर्दियां प्रदूषण के लिए और घातक होती हैं? अगर सर्दियां पड़ रही हैं और सर्दी पड़े तो क्या पॉल्यूशन और भी बढ़ सकता है?
सर्दियों के चलते ये कनेक्टेड है डेफिनेटली, क्योंकि हवा बिल्कुल भी फैलती नहीं है इस दौरान और प्रदूषण काफी ठहराव सा हो जाता है, तो इसमें उपाय एक ही ये है कि आप प्रदूषण जितना कम करेंगे उतना ही फायदा होगा।
ये थे पर्यावरण विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय और उनसे बात कर रहे थे मोहम्मद शाहिद। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। क्रिसमस की सुबह सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब बारी है तीसरे टेस्ट मैच की। 4 मैचों की सीरीज के इस तीसरे मुकाबले का आगाज बुधवार बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर को मेलबर्न में होने जा रहा है। भारत ने एडिलेड टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज का पहला मैच 31 रन से जीता था। इसके बाद पर्थ में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने 146 रन से टीम इंडिया को मात देकर सीरीज में वापसी की। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। कैसा चांस है भारत का कल के मुकाबले में जीतने का, बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन।
देखिए, चांस तो है लेकिन मुझे लगता है कि एडवांटेज अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में है, क्योंकि जिस तरह से फाइट बैक किया पर्थ में और जिस बड़े मार्जिन से जीती है ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि कैचिंग अप इंडिया को करना पड़ेगा, क्योंकि 1-0 का जो एडवांटेज था वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है और अब ऐसे लग रहा है कि इंडियन टीम जो है प्रेशर में ज्यादा रहेगी।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन। अब बात एक नया इतिहास रचने वाली साइकिलिस्ट की। पुणे की 20 साल की वेदांगी कुलकर्णी ने रचा है इतिहास। वेदांगी ने 159 दिनों तक रोजाना साइकिल चलाकर 14 देशों का सफर किया। इस सफर पर वेदांगी ने रोजाना लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय किया। वो सबसे तेज इस सफर को पूरा करने वाली एशियाई महिला बन गई हैं। और अब जाने से पहले बात बैडमिंटन की। प्रीमियर बैडमिंटन लीग में आज मुकाबला होगा बेंगलुरु रैप्टर्स और पुणे 7 एसेस के बीच। खेल समाचारों में आज इतना ही।
मेलबर्न में कल से शुरू हो रहा टेस्ट मैच भारत के लिए बेहद अहम है। भारतीय टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। ऐसे में ये मैच ही तय करेगा कि क्या भारतीय टीम रिकॉर्ड बदल पाएगी। और अब आखिर में मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व को अमरीकी वित्तीय बाजारों में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक सरकारी परिसर में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया में शनिवार को आई सुनामी से मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 373 हो गई है। आशंका है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। म्यांमार में दोषी ठहराए गए समाचार एजेंसी रॉयटर्स के 2 पत्रकारों की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश के सामने अपील दर्ज की है। सूडान के सूचना मंत्री बुशरा गमा अरोर ने कहा है कि सरकार देश की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर है। ब्रेड और ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी के साथ देश में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पोप फ्रांसिस ने अमीर देशों में रहने वाले लोगों से साधारण और तड़क भड़क जिंदगी से दूर रहने की पेशकश की है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये संदेश दिया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।